گاؤں والے سب آئے
ہیں جو آس پاس میں گاؤں والے ہیں وہ سبھی
پر بٹھا کر لے جاؤں گا ابھی وہ پیار کیوں نہیں پیدا ہوتا لوکک دنیا میں کسی کو کوئی سے پیار ہو جاتا ہے تو اس کی نظریں کتنی یاد آتی رہتی ایک دو دس سیکنڈ کی نظر بھولتی ہی نہیں اور یہاں 70 سال ہو گئے بابا کو دست دیتے دیتے اور میل نہیں ہو پاتا یاد سے یاد اتنی ملتی نہیں نہیں تو بابا کہتے ہیں دل سے دل کو راحت ہوتی ہے سمے میں جو دنیا کا وناش ہوگا اس سمے بچوں کو نینوں پر بٹھا کر لے جاؤں گا تو کیا دیہ کو بٹھا کے لے جائیں گے کس کو بٹھا کے لے جائیں گے جو آتما ابھیمانی بچے بنے ہوں گے جنہوں نے اپن کو پرشارتھ کر کے پریکٹس کر کے آتما بنایا ہوگا ان کو لے جا دیں گے ایسے بچوں کو لے جائیں گے جن کے دیکھنے سے ہی دوسروں کو آکرشن ہو جائے
نظر سے نیہال یہ بھکتی کا بات ہے بھکتی کا بات ہے
بھکتی کی بات نہیں ہے پریکٹیکل بات ہے ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے پیار سے اور بچہ ماں کو دیکھتا ہے پیار سے जैसे गोद में बच्चा माँ की गोद में तुरंत चला जाएगा, कोई दूसरा उसे गोद में लेना चाहे तो नहीं जाएगा, ऐसे दृष्टि का भी हिसाब है। दृष्टि से दृष्टि तब मिलती है जब समान स्टेज हो। मेल भी तब होता है, दुनिया में मेल करते हैं, शादियां करते हैं तो मेल करते हैं ना, उम्र भी मिलती हुई हो, शरीर की सुंदरता भी मिलती हुई हो, धन दौलत में भी मेल खाता हुआ हो, मेल देखा जाता है ना। तो ऐसे ही बाप तो सदैव पवित्र है, सदैव ज्योति बिंदु है, और बच्चे कभी ज्योति बिंदु और कभी देहाभिमान। और इतना लंबा टाइम हो गया, ऐसे लगता है जैसे जब तक विनाश नहीं शुरू होगा तब तक आत्मिक स्थिति धारण लगातार की करेंगे ही। तो कहावत भी है, टेढ़ी उंगली से घी निकलता है, सीधी उंगली से घी भी नहीं निकलता। कितने हो गोसाई, जब भय पैदा होता है तो प्रीति भी पैदा होती है।
మాతాజీ పూస్తే అవి జన్మ లేని వాళ్ళే परंधाम में अभी धाम है,
वो अभी जन्म लेने वाले
परंधाम में आत्मा के रूप में उधर रहता है।
अभी जन्म लेने वाले,
अभी जन्म नहीं लेने वाले,
अभी जिन्होंने जन्म नहीं लिया है वो परंधाम में पड़े हुए हैं।
पड़े हुए
हाँ।
क्यों वो उधर पड़े हुए हैं?
उसका पार्टी ही इतना है,
बड़ा पात्र अधीन
ఎక్కువ పాపం
చేయని వాళ్ళు కదా అక్కడే ఉంటారు, లాస్ట్ వస్తారు అన్నారు
కదా, మరి జన్మ తీసుకున్న
పాపం చేయబట్టి అక్కడ ఉంటాను జన్మ తీసుకుంటారు। పార్టీ ఏసా పాప కి దునియా ఘోర పాప కి దునియా జన్మ తమ జన్మ లేదు
పాప కి దునియా పాప ఆత్మా
पाप किया ही नहीं, अभी पाप की दुनिया अभी देखनी है, अभी देखी भी नहीं है आपने। हाँ नहीं देखी है तभी तो ऐसे कह रहे हैं ना, अभी तो घोर पाप की रौ रौ नरक दिखाई देगा, अपने आप इस दुनिया से बैराग आ जाएगा, अभी मेरा घर मेरा बच्चा मेरा पति ये सब भूल जाएंगे, इतना जबरदस्त घोर अन्याय घोर पाप घोर राव राम नरक देखने में आवे। अभी जो इस दुनिया से लागत पैदा हो रही है वो लागत नफरत में बदल जाएगी, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो आराम से शांति से जीवन चल रहा है। इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला है अभी सुख के दिनों में धीरज धरो, कोई कोई बच्चे अभी ही रोना शुरू कर देते हैं, अच्छा खासा खाने पीने को मिल रहा है, अच्छा खासा मकान बच्चों को मिल रहा है, बाबा के बच्चे तो इतने दुखी हैं भी नहीं जो सड़क पे एक एक टुकड़े के लिए रोटी मांगनी पड़े, सब कुछ मुहैया है, शांति से चल रहा है। آگے چل کر کے ٹائم ایسا آنے والا ہے ایک بوند پانی کا نہیں ملے گا, روٹی کا نوالا نہیں ملے گا, چاروں طرف اکال ہی اکال, موت ہی موت دکھائی دے گی.
చెప్పండి
కల్కి భగవాన్ అంటారు, సత్యసాయిబాబా అంటారు, వాళ్ళంతా
ఎవరు? సత్య సాయి బాబా, కల్కి భగవాన్, ఏ సబ్ ఫోన్ హై?
సత్య సాయి బాబా ఏ తో హో చుకే హై. कल की भगवान अभी कहाँ दिखाई दे रहा है? कौन है कल की भगवान? किसी को बताया किसी ने?
इधर है बाबा, ये चित्तूर जिला में है.
चित्तूर जिले के शास्त्रों में तो लिखा हुआ है मुरादाबाद की नजदीक कल की अवतार होगा, संबल गांव में होगा. तो यहाँ चित्तूर में कहाँ से आ गया? ऐसे जाने कितने पैदा हुए हैं, लेकिन ज्ञान क्या सुनाते हैं?
ज्ञान कुछ भी नहीं
सुनाते. मूल बात तो ज्ञान की है ना, तो ज्ञान नहीं है तो फिर भगवान किस बात का? भगवान दुनिया को किस बात से पलटता है? धन संपत्ति से पलटता है क्या?
वो बताता है हमका आशीर्वाद लेने से आपको पूरा शांत सब मिल जाए.
अगर तो उसी की टांगे दबाते रहे, मक्खनबाजी करते रहे,
ऐसा करता है
तो मक्खनबाजी करने वाले ही उनको मिलेगा. पुरुषार्थ करने की कोई बात ही नहीं रही ने फिर. भगवान तो ऐसी पार्शलिटी नहीं करता. भगवान आकर के ऐसा पक्षपात थोड़ा ही करता है. भगवान तो कहता है जितना करो उतना पाओ. ऐसे तो सारी दुनिया चाटुपार बन जाएगी, मक्खनबाजी करने वाली बन जाएगी. जैसे आज की दुनिया जो मक्खनबाजी करते हैं वो उनके बल्ले ही बल्ले, और जो अपना काम धंधा अच्छे से संभालते हैं उनको कोई पूछता नहीं.
अरे कल्कि भगवान
₹50,000 कल्कि भगवान का ये लोग पैसा देता है 50,000 10,000 ऐसा 5,000 ऐसा, वो कैसा वो क्यों देता है?
संसार में तांत्रिक प्रक्रियाएं चलने वाले और चलाने वाले ढेर सारे गुरु हैं जो भूतों प्रेतों की सिद्धि करते हैं, और भूत प्रेतों की सिद्धि के आधार पर अल्पकालिक की सिद्धियां दिखा करके लोगों को लुभाते. इससे कोई स्वर्ग नहीं बन जाता है. ये कोई नहीं कहता है कि मैं इतने दिनों के अंदर दुनिया को स्वर्ग बना के दिखाऊंगा. ये तो बाप ही आकर के बताते हैं कि मैं एक ही जन्म में आकर के एक इसी जन्म में इस दुनिया को पलट करके तब वापस जाऊंगा. और भगवान क्या पैसों का भूखा है? ज्ञान की संपत्ति देता है, पैसों से क्या काम? पैसे लेने वाले कोई भगवान होते हैं क्या? पैसों के भिखमंगे हैं भगवान? तो ब्राह्मणों ने भी बदनामी की है भगवान की पैसे मांग मांग करके.
శరీరం
वो कल्कि भगवान सूक्ष्म से भूत प्रेतों को आत्मा को वो आह्वान करेगा फिर बताएंगे।
भूत प्रेतों को आह्वान करता है, आह्वान करने के बाद फिर बताता है।
बताता
माने भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश करती है।
हाँ, प्रवेश करता है।
तो भूत प्रेतों की पूजा करना और देवताओं की पूजा करना और भगवान की पूजा करना, इसमें अंतर नहीं है। गीता में तो लिखा हुआ है जो भूतों के पुजारी हैं वो भूत प्रेत बनते हैं, जो देवताओं के पुजारी हैं वो देवता बनते हैं, और जो मेरा अनुगमन करने वाले हैं, मेरा पीछा करने वाले हैं, वो भगवान भगवती बनते हैं। तो भगवान से प्राप्ति करना अच्छी बात है, देवताओं से प्राप्ति करना अच्छी बात है, या भूत प्रेतों से प्राप्ति करना अच्छी बात है? भगवान से प्राप्ति करना
ओम नमः शिवाय। उसमें 12 शक्तिपीठ तैयार हो जाएगा।
12 शक्तिपीठ तैयार हो गए।
हाँ।
ओम नमः शिवाय टीवी के अंदर। बारह शक्तिपीठ तैयार नहीं हो गए अभी तो, ज्ञान में 8 भी तैयार नहीं हो पाए। हाँ, 8 की प्रत्यक्षता होने वाली है। जब 8 प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो जो 4 बचे हुए विनाशकारी नष्ट देव है वो भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। वो 12 ही ज्योतिर्लिंगम गाये हुए हैं। मुनीश्वरा मुनि कहा जाता है जो मन का उपयोग करे, जो मन को उपयोग करे, मन को चलाए श्रीमत के अनुकूल, मन से ऐसे ऐसे संकल्प करे श्रीमत के अनुकूल जिससे विश्व का कल्याण हो, विश्व का वाइब्रेशन बने, विश्व का वाइब्रेशन बिगड़े नहीं, ऐसे मन को, मन रूपी घोड़े को चलाने वाले को मुनीश्वर कहा जाता है। मनन चिंतन मंथन करे नई दुनिया के बारे में, ज्ञान के बारे में मनन चिंतन मंथन करे, आत्माओं के कल्याण के बारे में मनन चिंतन मंथन करे, उसको मुनीश्वर कहा जाता है।
फिर माता जी पूछता है, पूछती है बाबा, चनकेश्वर कौन? चनकेश्वर मुनीश्वर
चिन्ह नहीं होता
है,
चिन्ह 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 कहते हैं, छोटा चिन्ह माने छोटा, चंद्रकेश्वर माने जो छोटे छोटे हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दिखाई छोटे पड़ते हैं लेकिन काम बहुत बड़ा करते हैं, जैसे बाबा के बच्चे साधारण बच्चे हैं या बड़े बड़े हैं दुनिया की नजरों में, साधारण है, छोटे छोटे हैं, सहयोगी भगवान के बनते हैं, और वो छोटे छोटे सहयोगी सारे संसार में तहलका मचाने वाले, इसलिए उन छोटे छोटे सहयोगियों को लेकर के जो 108 की माला बनती है, उस माला को बनाने वाला एक बड़ा है, उसको कहते हैं चिन्ह के ईश्वर है, छोटो छोटो का ईश्वर है।
सूर्य ने माता जी पूछती है सूर्य को क्यों कहता है 6 महीने दक्षिणायन में है, होता है 6 महीने में उत्तरायण में होता है।
हाँ जी, इसलिए कहता है कि ज्ञान सूर्य शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो ब्रह्मा के तन के द्वारा साकार में पाठ बजाते हैं, उसे कहते हैं उत्तरायण। और फिर अपने शरीर छोड़ दिया तो चले गए दक्षिणायन, माने जो साकार तन था कष्ट वाली आत्मा उसके द्वारा काम करना बंद कर दिया, और जो असुर हैं वो मैदान में आ जाते हैं, उन असुरों की तरफ चले जाते हैं, उसको कहते हैं सनसेट पॉइंट, माउंट आबू में यादगार बनी हुई है। सूर्य अस्त हो गया कहाँ, पश्चिम में, पश्चिमी सभ्यता में, पश्चिमी सभ्यता कहो दक्षिणी सभ्यता कहो, जहाँ मुसलमानों का और क्रिश्चियंस का राज्य, वहां सूर्य अस्त हो गया, सूर्य वहां चला गया तो वो दक्षिणायन हो गया। अब दक्षिणायन से फिर उत्तरायण आता है 76 में राम वाली आत्मा के थ्रू, वो कोई जो जो पहचानता जाता है उसके लिए उत्तरायण है, और जो नहीं पहचानते हैं उनके लिए दक्षिणायन, इसको कहते हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। भीष्म पितामह के लिए कहा गया, भीष्म पितामह ने कहा कि जब उत्तरायण सूर्य हो जाएगा तब मैं शरीर छोड़ूंगा, माना जब सूर्य चंद्रवंशी और सूर्यवंशी आत्माओं की तरफ चमकता है, देव आत्माओं की तरफ चमकता है, उनको रोशनी देता है, तब ही वो शरीर छोड़ते हैं। राक्षसी आत्माओं की तरफ जब सूर्य चमकता है पश्चिमी सभ्यता की ओर, तब उन्होंने जीते जी मरने का काम नहीं किया। यह है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। अरे हर धर्म में 12-12 के ग्रुप हैं, वही राशियां हैं 12, कोई दूसरी बात है 12 राशियां नहीं है। दुनिया की हर मनुष्य आत्मा 12 भागों में बटी हुई है, 12 भागों में से कोई न कोई राशि की मनुष्य आत्मा होती है, चाहे कोई भी धर्म की हो, लेकिन कोई न कोई राशि का असर होता है।
बाबा ये भाई साहब पूछता है कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्यों पड़ता है?
एक तरफ सूरज है, बीच में पृथ्वी है, सूरज भी है आग का गोला और पृथ्वी भी गोल है, और एक तरफ चंद्रमा है। पृथ्वी का सूरज जब चमकता है तो पृथ्वी का परछाया चंद्रमा के ऊपर पड़ता है, जिस हिस्से में परछाया पड़ेगा तो पृथ्वी पर रहने वाले चंद्रमा को अंधेरा देखेंगे या उजेले में देखेंगे, अंधेरे में देखेंगे, वो हिस्सा दिखाई नहीं पड़ेगा, तो कह देते हैं चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लग गया। अब यही बात जो ज्ञान चंद्रमा चैतन्य आत्मा ब्रह्मा की है उसके ऊपर भी लागू होती है। ज्ञान सूर्य संसार में चमक रहा है, अभी बीच में पृथ्वी माता जगदम्बा आ जाती है, तो जगदम्बा का परछाया प्रभाव चंद्रमा के ऊपर पड़ जाता है और चंद्रमा बात को नहीं समझ पाता, ज्ञान की गहराई को नहीं समझ पाता, इसलिए वो अंधेरे में दिखाई पड़ता है। सबको नहीं अंधेरे में दिखाई पड़ता, जो सूरज की अपोजिशन की साइड में है पृथ्वी पर, उनको चंद्रमा अंधेरे में दिखाई पड़ता है। यहां है प्रैक्टिकल में ऐसे चंद्रग्रहण दिखाई पड़ता है, ऐसे सूर्य ग्रहण भी है। क्या सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी एक ओर पृथ्वी, बीच में चंद्रमा आ गया और इस तरफ सूर्य, तो पृथ्वी पर रहने वालों पृथ्वी की परछाया चंद्रमा पर पड़ती है, चंद्रमा की परछाया सूरज के ऊपर पड़ती है, तो सूरज अंधेरे में आ जाता है, दिखाई पड़ता है। सूरज कभी अंधेरे में आने की बात नहीं है। जो पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं उनको सूरज का वो हिस्सा दिखाई नहीं पड़ता, तो कह देते हैं सूरज अंधेरे में आ गया। और सूरज तो आग का गोला है, वो कभी अंधेरे में आएगा क्या? उनको दिखाई नहीं पड़ता है। ये बात इनको समझाओ अपनी भाषा में।
अरे माताजी माताजी पूछती है,
अरे एक बात तो पूरी हो जाने दो, उसकी समझ में आ गई?
समझ नहीं, फिर समझ। वो बीके वाले उसका साक्षात्कार हुई स्वप्न में, उसका करंट वो निकाल के, वो ब्रह्म कुमारी आश्रम का करंट इलेक्ट्रिसिटी वो निकाल दिया। ये माता जी
ये साक्षात्कार हुआ? अच्छा साक्षात्कार हुआ,
क्यों पूछता है? मुझ पर निंदा लगता है,
कलंक लगता है। कुछ भी पुरानी बात कह सकता है, साक्षात्कार करके जो आप भगत लोग होंगे वो उनकी बातों को मान लेंगे, जो बुद्धिमान लोग होंगे वो उनके साक्षात्कार और स्वप्न की बातों को थोड़ी सच्चा मानेंगे। उनके जो भगत होंगे वो इन बातों को मानेंगे, सबको ही मान लेगा। जो बुद्धिमान पढ़ा लिखा आदमी होगा वो उनकी बात मान लेगा। ऐसे आगे चल के ढेर सारे कलंक लगेंगे, ढेर सारी बातें फैलाएंगे उनकी पड़ती, उन्हें परवाह नहीं करनी है। झूठा तो झूठा है, झूठे से कभी प्रभावित नहीं होने चाहिए। बकने दो, हियर नो इमेज, ऐसी बात को भरी सभा में सुनाना भी नहीं चाहिए। सुनाते तब है जब प्रभावित हो जाते हैं, नहीं तो सुनाने की भी दरकार नहीं है। बक बक करता है, करने दो।
సూర్యుడు ఇప్పుడు ఉదయిస్తున్నాడు కదా, సత్యభూమి పర్వతం వైపు ఉదయిస్తారనేసి ఉంది ఒక్కలో, అది కరెక్ట్ కాదా బాబా?
సూర్యుడు తూర్పును
ఉదయించేవాడు
సూరజ్ ఈస్ట్ మే ఉగల్తా హై,
सूरज पूरब में उगता है। जैसे पूरब में कलकत्ता है, कलकत्ते में सूरज उगा। हाँ जी,
वो
ज्ञान सूर्य भी कलकत्ते में उगा, पूरब में।
पश्चिम में उदय हो जाएगा,
पश्चिम में अस्त हो जाता है।
हाँ, अस्त सचयुग में पूछता है वो माता जी, सचयुग में क्यों पश्चिम में उगलता है?
वहाँ पूरा पश्चिम की बात ही नहीं, वहाँ तो हर समय सूरज रोशनी ही रोशनी रहती है, वहाँ रात होती नहीं। जैसे नॉर्थ पोल है पृथ्वी का उत्तरी हिस्सा और साउथ पोल है पृथ्वी का दक्षिणी हिस्सा, उत्तरी हिस्से में छह महीने तक रात होती ही नहीं, सूरज लगातार चमकता ही रहता है। ऐसे ही जब सत्युग शुरू होगा, एटम बम फटेंगे, तो एटम बमों के फटने से पृथ्वी का वो जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, और बिगड़ जाने से पृथ्वी की धुरी जो ऐसी अभी चमक रही है वो चेंज हो जाएगी, रोशनी ही रोशनी रहेगी, चंद्रमा दिखाई भी नहीं देगा। क्या होगा चंद्रमा का, वो अंधेरे में आएगा कभी? एक शिव बाबा दूसरा अनुकूल
అంటే అక్కడ మహల్లు ఇవన్నీ ఉండవు కదా, మరి అధికారాలు అనేది ఎట్లా?
ఇక్కడ పురుషార్థాన్ని బట్టి బాబా ఏ మాతాజీ పూజతి పురుషార్థ కర్తా హై సబ్, उसका प्रारब्ध हमको अधिकार मिलता है सचिव में।
हाँ।
तो
वो
बड़े बड़े पैलेसेस बिल्डिंग ये सब उधर नहीं होता है।
हाँ।
तो क्यों पूछता है, ये अधिकार मिलता है, अधिकार माना राजा वो
माना बड़ा महल होता है तभी महल से ही सुख होता है क्या? झोपड़ में रहने वाले को सुख नहीं होता क्या? अरे वहाँ हाथ पांव की मेहनत से बड़े महल नहीं तैयार करेंगे, वहाँ तो प्रकृति ही प्राकृतिक रूप से ऐसा बड़ा महल तैयार कर देगी जो बड़े बड़े पर्वतों के अंदर बड़ी बड़ी गुफाएं होंगी, अच्छे अच्छे कमरे होंगे, उनमें हीरे जवाहरात जड़े हुए होंगे, रोशनी ही रोशनी रहेगी, और क्या चाहिए, आपको बनाना भी नहीं पड़ेगा, प्रकृति ही सारा काम तैयार करेगी। अभी तो मकान बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है।
बाबा ये भाई साहब पूछता है, ये सुब्रमण्य स्वामी का सात सिर है, सात सिर है सुब्रमण्य स्वामी का, क्यों ये सात सिर है?
सुब्रमण्य स्वामी कोई दूसरा नहीं है, जैसे सूरज को सात घोड़े दिखाए जाते हैं ऐसे ही सुब्रमण्य स्वामी को छह सिर दिखाए गए, वो सात सिर सात नारायणों के सूचक है, वो सात नारायणी आत्माएं उनके साथ काम करती है, इसलिए सात सिर दिखाए गए। वास्तव में अष्टदेवों की बात है, सुब्रमण्य स्वामी का एक सिर और सात सिर और दूसरे टोटल मिला के ये आठ से ऊपर आपके दिखाई दे रहे हैं, या तो आत्मा के पुरुषार्थ की निशानी है। और ब्रह्मण्यम का मतलब ही होता है सु माने सुंदर, ब्रह्म माने ब्रह्मा, सुंदर ब्रह्मा का स्वरूप।
कन्या का गर्भ में जन्म लिया क्रिस्ट क्राइस्ट क्यों वो कन्या का गर्भ में जन्म लिया?
तो आप बोल रहे हैं कि क्राइस्ट ने कन्या के गर्भ से जन्म लिया, क्रिश्चियंस ने ये शास्त्रों में लिख दिया कि क्राइस्ट ने कन्या से जन्म लिया। अब कोई कन्या चोरी करके किसी पति को बना ले और कोई न जान पाए तो संभव हो सकता है कि नहीं है? कर्ण के बारे में लंबे टाइम तक किसी ने नहीं जाना कि कर्ण किसका बच्चा है। ऐसे ही क्राइस्ट भी कोई कन्या से पैदा नहीं होता है, उस कन्या ने कोई न कोई पुरुष के साथ चोरी से संबंध किया और वो बच्चा पैदा हुआ। जैसी पढ़ाई पढ़ा देते हैं वैसी सत्य वचन महाराज सो हिसाब है। हिंदुओं में भी ऐसी ढेर सारी बातें बताते रहे जिनका ना आगा ना पीछा, बस सत्य वचन महाराज आपने जो कहा सो सच्चा। आकाश से आवाज आया ऐसा चाहिए। अच्छा
मेरे पास पैसा नहीं है।
బ్రహ్మ కుమారుని సరి చూడాగా సారి జీ భీక్ మంగతారా సరి చూడని కే బాద్ ఊపర్ జాకే భీక్ మంగ రా ఆకు సాక్షాత్ స్వప్నే పైసా చాయే బాబా కహతే మంగనే మరణా వాళ్ళ ఆపని జవాబ్ క్యూ నీ దా
మేరే
పాస్ నీ మంగనే మరణా వాళ్ళ మర జాకే తు
भाई पूछता
है
अब्दनारेश्वर में शिवशंकर को दिखाता है
शिवशंकर को नहीं दिखाते शंकर और ब्रह्मा शंकर माने मिक्स राम और कृष्ण को दिखाते हैं राम है बाप और कृष्ण है अम्मा दोनों का कंबाइंड रूप दिखाया है माने शिव मात पिता दोनों के रूप में प्रैक्टिकल पार्ट बजाते हैं शंकर के रूप में चंद्रमा के रूप में कृष्ण की सोल पार्ट बजाती है और राम के रूप में बाप के रूप में राम वाली आत्मा पार्ट बजाती है और ब्रह्मा ने जैसे मां बनकर के 300-400 कन्या माताओं की पालना की ऐसे ही शंकर के द्वारा 300-400 ही नहीं प्रैक्टिकल में 300-400 से भी ऊपर स्टेज चली जाती है पालना करने की कितने हो जाते हैं 16,000 तक संख्या हो जाती है वो कोई शंकर अकेला पालना नहीं करता शंकर के मस्तक में विराजमान वो कृष्ण की सोल माता के रूप में उन 16,000 की पालना करती है बिना माँ के परिवार की पालना नहीं होती है
तो ये जय माता जी पूछता है 16,108 में क्या कन्या और माता जी भी शामिल हो जाएगा
क्यों नहीं जो पवित्रता को पालन करेंगे वो बाबा को ज्यादा याद करेंगे जो आत्मिक स्थिति को धारण करेंगे वो आएंगे कन्या माता और पुरुष का सवाल थोड़ा ही है चाहे कन्या हो चाहे माता हो चाहे पुरुष हो चाहे कुमार हो चाहे अधर कुमार हो कोई भी 16,000 की लिस्ट में आवेंगे
ओ माता जी पूछती है बाबा ये 108 में भी ऐसा हो जाएगा
बिल्कुल हो जाएगा
శివ ప్రవేశ బాబా మాతాజీ పూస్తా మాతాజీ కన్యా కన్యా టీచర్ టీచర్ ఓ పూస్తా 108 మే క్యా శివ బాప్ ఉస్మే ప్రవేశ హో జాయే శివ అగర
108 మే ప్రవేశ హో జాయే तो क्या सर्वव्यापी नहीं हो सकता
प्रवेश
108 में प्रवेश होगा तो 16,108 में भी प्रवेश होगा फिर तो 1,00,000 जो शालिग्राम है रुद्रमाला के बन के उनमें भी प्रवेश होगा फिर 9,00,000 में भी प्रवेश होगा మరి 500 crore మేము ప్రవేశం అవుదాం ఇసిలియే శివతో ఏక ముకరర్ రథమే యీ ఆతా హై బాకీ మమ్మా బాబా కీ ఆత్మాయే బచ్చో మే ప్రవేశ్ కర్తీ హై
అమ్మా బాబా నే ప్రవేశ్
కర్తీ శివ కా ప్రవేశ్ సిర్ఫ రామకృష్ణ కీ ఆత్మో మే హీ హోతా హై
శివుని కా ప్రవేశ్ కేవలం రామకృష్ణ ఆత్మలోనే జరుగుతుంది
अगर श्रीमत के बरखिलाफ काशी नगरी में करवट खाने के बाद भी चले तो कहां की यादगार है? ब्राह्मणों की संगमी भी दुनिया की यादगार है। वहां कितनों ने काशी करवट खाई होगी उस कुएं में, खांडा लगा रहता है नीचे, ऊपर से एंगल बांध के, ज्ञान का एंगल बांध के कूदते हैं, ज्ञान बुद्धि में बैठा हुआ है और खांडे में धार लगी हुई है, वहां खप से देह अलग और आत्मा अलग हो जाती है, फिर पाप करना शुरू कर देते हैं अगले जन्म से। तो ये प्रश्न आया, जो आत्मा है इसे नरक में शरीर छोड़ते हैं तो नरक में ही शरीर छोड़ना पड़े? नहीं, नरक में ही जन्म लेंगे, पर ब्रह्मा बाबा के नरक की कलयुगी दुनिया में शरीर छोड़कर नहीं, कलयुगी दुनिया में ही शरीर छोड़ा ना, कलयुगी दुनिया में शरीर छोड़ा तो सतयुग में कैसे जन्म लेंगे? अरे स्थूल जन्म की बात है ही नहीं, कौन से जन्म की बात है, है? वाइब्रेशन की नई दुनिया के जन्म की बात है, है? हाँ। उनको भी अभी सूक्ष्म शरीर छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? अरे ये सूक्ष्म शरीर का बंधन है या नहीं है? ये भी देहभान है या आत्माभिमान है? ये भी देहाभिमान है। सूक्ष्म शरीरधारियों को ज्यादा देह अभिमान रहता है, हैं? मैं सूक्ष्म शरीरधारी हूँ, ये तो देह के बंधन में बंधा हुआ है, ये क्या कर पाएगा? मैं तो जहां चाहूं एक सेकंड में जा सकता हूं, तो देहवान रहता है ना? और मेरी बटालियां तो ज्यादा पावरफुल है, जो देह के बंधन में बंधे हुए उनकी बटालियां ज्यादा पावरफुल नहीं है, कितना देहवान रहता है, उनका भी अपना गैंग होता है। क्या सूक्ष्म शरीरधारियों का एक परिवार नहीं होता, उनके अलग अलग ग्रुप हैं। नहीं तो कुमारिका दादी से क्यों कहा कि 10-12 दिन हमारे साथ रहना, बाद में तो अपने ग्रुप में चली जाएंगे, उनका इस्लामी ग्रुप और उनका चंद्रवंशी ग्रुप। तो चंद्रवंशी ग्रुप में इस्लामियों को घुसेड़ के रखेंगे तो वे सत्यानाश हो जाएगा, इसलिए तुम अपनी सेवा अलग करो और हम अपनी सेवा अलग करेंगे। नंबरवार की बात ही नहीं है, अभी तो इधर उधर 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 हो रहे हैं, जब दुर्मुट पड़ता है माया का, उस संगठन में पहुंचने के बाद या भक्ति मार्ग की काशी करवट खाने के बाद पाप कर्म नहीं करते हैं, कोई ज्यादा पाप कर्म करते हैं, कोई कम पाप कर्म करते हैं, कोई माया मौसी के मत पर नहीं चलेंगे, काशी माता को पहचान लिया तो उसका रिगार्ड करेंगे, नहीं पहचाना होगा तो बुद्धि कहीं इधर उधर दूसरी अम्माओं में भटकी होगी, बप्पाओं में भटकी होगी या लौकिक बाप में भटकी होगी, लौकिक अम्मा में भटकी होगी, तो वहां सपोर्ट करना बुद्धि का शुरू कर देंगे, तो पतन होगा या उत्थान होगा, फिर पतन
होगा। तो
अभी बना ही कहां है जो बढ़ेगा, अभी 2 ही नंबर तो डिक्लेयर हुए हैं, 2 के लिए कहा है कि अभी 2 लेट का बोर्ड नहीं लगा है, सिर्फ लेट का बोर्ड लगा है,
دو ڈکلیئر ہو گئے نئی دنیا کا فاؤنڈیشن ڈالنے والے. فاؤنڈیشن ڈالنے والے ہیں, نئی دنیا کے اما باپ نہیں ہیں. کیا کہا, ابھی نئی دنیا نہیں بن گئی. اور دیا گیا ٹائم تو ہو گیا. اور کچھ بچا بچا ہاں جی
پہلے لکشمی نام رکھ
دیا,
بعد میں
نارائن
کے نام
رکھ دیا, کیا بابا؟ پہلے آپ پڑھائی پڑھو, کیونکہ اس بات کا جواب مرلیوں میں 100 بار دے دیا ہوگا. ہے
لکشمی نارائن کو پورا پرکاش ہے, دادا کشن کو.
اب دوسرا پرشن شروع ہوا, اب دوسرا پرشن شروع ہوا. اس بات کا بھی جواب 150 بار دے دیا ہوگا. دھیان سے مرلیاں پڑھو, کیا الویلا پن نہ دو. ہاں جی لکشمی کا نام پہلے کیوں, کسی کو پتا ہے؟ سب بھول گئے. ارے سیتا کا نام پہلے, رام کا نام بعد میں, لکشمی کا نام پہلے, نارائن کا نام بعد میں, ایسے کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ لکشمی نارائن نے جو پرسارتھ کیا اور رام سیتا نے جو پرسارتھ کیا, وہ دونوں مل کر کے جب پرسارتھ نہ کریں, مایا کے اوپر جیت نہ پائیں, تب تک ان کو جیت نہیں مل سکتی. ماتا گرو کو آگے کرنا پڑے. تب اپوترتا کے اوپر جیت ہوگی. پرسارتھی سمان چاہیے مایا کو جیتنے میں, یا آسمان پرسارتھی چاہیے؟ ارے گاڑی کے دونوں پہیے ایک جیسے ہوں گے تو گاڑی دوڑے گی, یا ایک پہیا چھوٹا ہوگا اور ایک پہیا بڑا ہوگا تو گاڑی آگے بڑھے گی؟ نہیں بڑھے گی. اس لیے لکشمی کا نام آگے, سیتا کا نام آگے, اور رام کا نام اور نارائن کا نام پیچھے. کیوں؟ ارے نارائن کی تو ستیہ نارائن کی کتھا گائی جاتی, لکشمی کی تو گائی نہیں جاتی, پھر نارائن کا نام پیچھے کیوں؟ ہاں دیکھو, پرش سب دریودھن دشاسن ہوتے ہیں پرشارتھی جیون میں. کیا پرش چولا کیا ہوتا ہے پرشارتھی جیون میں بھی؟ پرش چولا دریودھن دشاسن ہوتا ہے. کنیا ماتائیں کوئی بھی, یہ نہیں کہا کہ کنیا ماتائیں سب چوپن کھا پوتنا ہوتی ہیں, کوئی کوئی ہوتی ہے. اس لیے ماتا گرو کو آگے کر کے پرشارتھ کرنا پڑے, ان کو نگلیکٹ کر کے پرشارتھ پورا نہیں ہوگا, ان کو گرو بنا کے چلنا پڑے. ایسے نہیں کہ گیتا پاٹھشالا یوگلوں کے دوارا چڑھائی جاتی ہے تو ہم مکھیا بن کر کے بیٹھے رہیں اور ماتا کو دبو بنا کر کے بیٹھا دیں. پارٹیاں لے کر کے ہم جائیں گے, مکھیا بن کر کے ہم دکھائیں گے, ماتا تو بیچاری رہ گئی. نہیں, ہر بات میں کس کو آگے بڑھانا ہے؟ کنیا ماتاؤں کو آگے بڑھانا ہے. اور دوسرا پرشن ماتا نے کیا, لکشمی نارائن کو پرکاش کے گھیرے میں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے, اور رادھا کرشن کو चारों तरफ से प्रकाश के घेरे में नहीं घेरा हुआ है, सिर्फ उनका मुखड़ा दिखाया हुआ है प्रकाश के घेरे में। इसका मतलब क्या है, है? जो लक्ष्मी नारायण हैं, जो नरसे नारायण बनने वाले हैं, उनकी सारी दुनिया ही ज्ञानमय हो गई, ज्ञान के प्रकाश से भरपूर है, एड़ी से लेकर के चोटी तक। उनका कोई अंग अज्ञान में नहीं है। और नीचे जो राधा कृष्ण दिखाए गए हैं, उनकी सिर्फ आत्मा ज्ञान के अंदर है, एडवांस पार्टी में जब तक प्रवेश है तो ज्ञान में है। उनका सर माने आत्मा वो ही ज्ञान में है, और जब प्रवेशता से बाहर आते हैं तो सूक्ष्म शरीर आवृत कर लेता है। सूक्ष्म शरीर में ज्यादा देहवान है या कम है? ज्यादा देहवान है। ज्ञान की रोशनी का नाम निशान नहीं। जब सूक्ष्म शरीर में होते हैं तो उनके अंदर वाइब्रेशन चलते हैं, अंधेरा कायम रहेगा। गीता के भगवान को प्रत्यक्ष होने का करने देने का सवाल ही नहीं। तो उनके देह के चारों तरफ जो राधा कृष्ण का चित्र दिखाया है, उनकी देह के चारों तरफ उजेला नहीं दिखाया गया है, प्रकाश नहीं दिखाया है ज्ञान का, उनकी आत्मा के चारों तरफ ही ज्ञान का प्रकाश दिखाया है। और चलो।